नमोरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं। केशो पंच नमो यारो सब पाव प्रणासनो मंगलान च सबे से पढ़म हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवल पन्नतो धम्मोलोगुत्तमा चत्तारि सर्वं अरहंत सरणं पव्वज्जामि सिद्ध सरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली नमो अरहंताणं को लेकर के जो सिद्धांत वचन अपन ने पढ़े सुने उसमें एक प्रश्न आ रहा था कि अध्यात्म ग्रंथों में ये बात कही गई है कि राग बंध का कारण है, शुभोपयोग से बंध होता है, शुद्धोपयोग से ही मुक्ति मिलती है, तो फिर ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि अरहंत को किया हुआ नमस्कार आदि कर्मों की निर्जरा का कारण है, सातिशय पुण्य का कारण हो सकता है सम्यक दृष्टि जीव के लिए, और अन्य जीवों के लिए यदि वो भक्ति से कर रहे हैं तो पुण्य का कारण हो सकता है, और श्रवण कर रहे हैं तो फिर विघ्नों का विनाशक हो सकता है, लेकिन नमस्कार जो अपन अरहंत देव को कर रहे हैं वो गुणश्रेणी निर्जरा कैसे करा सकता है, ये प्रश्न आता है। और जो आज्ञा प्रधानी शिष्य जन है, भक्त जन है, वो तो यदि धवला की पंक्तियों में लिखा हुआ है कि अरहंत नमस्कार से निर्जरा होती है, तो फिर वो उनको मान्य हो जाता है। लेकिन जो गहराई में जाकर प्रश्नोत्तर करके, खोजबीन करके किसी बात को समझना चाहते हैं, उनकी ओर से ये प्रश्न उठ सकता है कि अरहंत नमस्कार करते समय जो निर्जरा हो रही है वो एवं भूत नये से किसके द्वारा हो रही है। निर्जरा का हेतु कौन सा भाव है, तो भावों में भी अपन विभाजन करते हैं। जैसे एक काल में जीव के अंदर जो भाव हो रहा है, उस भाव से किंचित पुण्य, किंचित पाप आदि का एक मिश्रण देखने में आता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको एक सिद्धांत का कथन बताते हैं कि कोई साधु ध्यान में बैठे हैं और वो मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। उदाहरण के लिए अपन तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को ले लें। वो ध्यानस्थ हैं, 7 दिनों से वो उपसर्ग चल रहा है, फिर धर्णेन्द्र पद्मावती आकर के उपसर्ग निवारण कर रहे हैं और इसी बीच उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और केवल ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व वो जो अपने 6ठे 7वें गुण स्थान में आरोहण अवरोहण में अवस्थित थे, वो अकस्मात 7म गुण स्थान से ऊपर की ओर गतिमान हो जाते हैं और कभी वापस नीचे न लौटने वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो 8वें गुण स्थान में चले गए, 9वें में चले गए। ध्यान की गहन अवस्थाएं हैं, गहराइयां हैं, उसमें वो डूबते चले जा रहे हैं। 8ष्टम गुण स्थान में पहुंच गए, 9वें गुण स्थान में पहुंच गए, 10म गुण स्थान में पहुंच गए। अब यहां पर अपन विचार करते हैं कि ये 10म गुण स्थान मोहनीय कर्म के उदय का अंतिम गुण स्थान है। 10म गुण स्थान के ऊपर मोह का उदय नहीं होता, तो 10म गुण स्थान में जो मोह का उदय है वो इतना दुर्बल है कि उस मोह में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो मोह का बंद बांध सके। और मोह की मात्र एक कर्म प्रकृति 10म गुण स्थान में ध्यानावस्था में पार्श्वनाथ भगवान के उदय में चल रही है, उस प्रकृति का नाम है सूक्ष्म लोभ। बादर लोभ 9वें गुण स्थान में नष्ट हो चुका है। बादर का अर्थ होता है स्थूल, मोटा, सूक्ष्म का अर्थ होता है बारीक। तो वो जो बारीक मोह है उदय में है भी, और उसके उदय के कारण वो अभी सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान में है, अभी वो मोह रहित नहीं है। तो उस लोभ के उदय से उनको सत्रह कर्म प्रकृतियों का बंध हो रहा है और स्थिति अनुभाव के साथ में बंध हो रहा है। कौन सी 17 कर्म प्रकृतियां हैं वो भी हम बता देते हैं, आप शांति से सुनते जाइए। यहां पर अपन एक फिल्टर कर रहे हैं, एक अपन खोज कर रहे हैं कि वहां पर 10म गुण स्थान में विराजमान पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, जिन पर उपसर्ग चल रहा है और फिर उपसर्ग निवारण करने वाले भी वहां पहुंचे हुए हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। कमठ का जीव अपना काम कर रहा है, धृणेन्द्र पद्मावती अपना काम कर रहे हैं, दो में भक्ति है, एक में वैर है, उनके भाव उनके साथ हैं और पार्श्वनाथ भगवान ध्यानस्थ है। उनको इनके प्रति न राग है न द्वेष, समता भाव में है। लेकिन वो जो उदय में सूक्ष्म लोग इतना सूक्ष्म है कि वो अपना ही बंध नहीं बांध सकता, मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता दशम गुण स्थान में, मोहनीय की बंध विच्छुत्ति नवम में हो जाती है। लेकिन 17 अन्य कर्मों का बंध हो रहा है, कौन से 17 कर्मों का बंध हो रहा है? तो मति ज्ञान, ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधिक ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, इन 5 का बंध बांध रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान। सिद्धांत के नियम का उल्लंघन तीर्थंकर भी नहीं करते। सूक्ष्म लोभ का उदय है तो इन कर्मों का बंध होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। फिर दर्शनावरण कर्म की 4 प्रकृतियों का बंध बांध रहे हैं, चक्षुर दर्शनावरण, अचक्षुर दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ठीक है। फिर अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का बंध बांध रहे हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय कर्मों का बंध बांध रहे हैं। घाती कर्मों में से एक मोहनीय कर्म का बंध वहां पर नहीं हो सकता, लेकिन 3 घाती कर्मों का बंध हो रहा है। तो कितनी प्रकृतियां हुई है? 14, 5 और 4 9, 9 और 5 14, ये 14 कर्म प्रकृतियों का बंध दशम गुण स्थान में पार्श्वनाथ भगवान बांध रहे। और कौन सी प्रकृतियां? क्योंकि कुल संख्या 17 है कर्म प्रकृतियों की, तो बाकी प्रकृतियां जो है वो अघाती कर्म संबंधी है। और अघाती कर्म संबंधी जो प्रकृतियां हैं उनमें नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 3 कर्म है। आयु कर्म का बंध मोक्षगामी जीव नहीं करते, ये अकाट्य नियम है, क्योंकि बंधी हुई आयु का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं होती, इसलिए ये बंध ही नहीं कर सकते आयु कर्म का। मोक्षगामी जो होते हैं, तद्भव मोक्षगामी जीवों को आयु का बंध नहीं होता। चरम शरीर थे पार्श्वनाथ भगवान। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि 8 कर्मों में से 2 कर्मों का बंध नहीं हो रहा है उनको, मूल प्रकृति की अपेक्षा। समझ गए? घाती कर्मों में मोहनीय कर्म का बंध नहीं हो रहा है और अघाती कर्मों में आयु का बंध नहीं हो रहा है। बाकी 6 कर्म प्रकृतियों का बंध हो रहा है और उन कर्म प्रकृतियों की कुल संख्या 17 है। अब देखें, वेदनीय कर्म में कौन सा वेदनीय कर्म बंध रहा होगा उनको? क्योंकि असाता कर्म का बंध 6ठे गुण स्थान तक ही होता है, उससे ऊपर 7वें आदि गुण स्थानों में असाता का बंध नहीं हो सकता। तो साता का बंध हो रहा है, ठीक है, दशम गुण स्थान के अंतिम समय तक साता वेदनीय कर्म का बंध स्थिति अनुभाग के साथ होता है। तो 14 में 1 प्रकृति जुड़ गई, 15 हो गई। फिर गोत्र कर्म, गोत्र कर्म में नीच गोत्र कर्म का बंध प्रथम और द्वितीय गुण स्थानों में होता है, भगवान दशम गुण स्थान में। तो अब कौन सा गोत्र कर्म बचा है? 2 ही गोत्र होते हैं, उच्च और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र का बंध हो रहा है उनको पार्श्वनाथ भगवान को दशम गुण स्थान में। सोलह हो गई प्रकृतियां। अब नाम कर्म, नाम कर्म में ऐसी कौन सी प्रकृति बाकी रह गई जो दशम गुण स्थान में बनती हो? तो मात्र 1 नाम कर्म की प्रकृति है जिसका नाम है यशस कीर्ति। यशः कीर्ति नाम कर्म का बंधन को वहां हो रहा है दशम गुण स्थान में, और बाकी किसी कर्म का बंधन नहीं हो रहा। अब विचार करने की बात है, दशम गुण स्थान में कौन सा उपयोग है, शुभोपयोग या शुद्धोपयोग? अध्यात्म ग्रंथों की अपेक्षा शुद्धोपयोग है। आगम की अपेक्षा देखें तो दो मान्यताएं हैं। एक धारा कहती है कि आठवें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है और दसवें गुणस्थान में भी शुक्ल ध्यान चलता है, प्रथम शुक्ल ध्यान। दूसरी धारा कहती है धवला की 13वीं पुस्तक में कि धर्म ध्यान चलता है दशम गुणस्थान तक, उससे ऊपर शुक्ल ध्यान होता है। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आती है, ओसंतोद पुधत्तम झायदि झाणम विदक्क विचारम खीण कसाओ झायदि एयत्त विदक्क विचारम। थोड़ा आज शास्त्रीय विषय है पर अगर मन स्थिर हो सके तो आप सावधानी से सुनकर इसका लाभ ले सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे विषय होते हैं अभ्यास न होने के कारण कठिन लगते हैं, पर अभ्यास होने के बाद बहुत आनंद आता है। जैसे आप देखिए, जब पहली बार आप किसी नई कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने पास में बैठा हुआ जो सहपाठी है उसका भी नाम पता नहीं होता, लेकिन एक महीने बाद, दो महीने बाद और एक साल के बाद आपको सबके सरनेम भी पता होते हैं और अन्य भी बहुत सारी जानकारियां हो जाती है। उसी प्रकार अभ्यास करने से कठिन विषय सरल हो जाता है। निर्जला का कारण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर अपन निकालते हैं। अगर अपन तत्वार्थ सूत्र में देखें तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र आता है नवम अध्याय में, ध्यान का जहां वर्णन किया आचार्य महाराज ने, वहां पर वो कहते हैं परे मोक्ष हेतु एक सूत्र है। परे का अर्थ होता है अंत के दो ध्यान। चार प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान दुखी होना, रौद्र ध्यान सांसारिक विषयों में खुशी मनाना, हिंसा झूठ चोरी परिग्रह में खुश होना रौद्र ध्यान है, और वियोग में संयोग में रोग में और अप्राप्त भोगों को लेकर दुखी होना आर्त ध्यान है। तो दुखी होना आर्त ध्यान है और खुशी मनाना रौद्र ध्यान है, तो ये दो ध्यान है। फिर दो सद ध्यान भी है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, ये दोनों मोक्ष के कारण है। ये जैन सिद्धांत का अभिमत है कि ये दोनों मोक्ष के कारण है। अब इसमें अपन देखें कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी धर्म ध्यान को कौन सा भाव मानते हैं, तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ में भाव पाहुड़ की 76वीं गाथा पर अपन जाते हैं, वहां पर आचार्य लिखते हैं भावो तिविहिपयारम सुहासुहम शुद्धमेव जानीह असुहम च अट्टरुद्धम सुधम अंजिणवरिंदेहि। भाव तीन प्रकार का है, जीव के अंदर भाव जो होता रहता है उसके तीन भेद, शुभ अशुभ और शुद्ध। हे भव्य जीवों, अथवा हे शिष्य तुम भाव के तीन भेद जानो, भाव तीन प्रकार के होते हैं ऐसा जानो। अब तीन प्रकार के भावों में अशुभ भाव कौन सा है, शुभ भाव कौन सा है? तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, अशुभम च अट्टरुत्तम, अशुभ भाव आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। ठीक है, जिस अशुभ भाव को अध्यात्म में पाप का कारण बताया वो आर्त और रौद्र ध्यान है। शुभ धम्मम, शुभ भाव क्या है? धर्म ध्यान। ध्यान देना, धर्म ध्यान शुभ भाव है और मोक्ष का कारण भी है। धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है या संसार का? मोक्ष का कारण है। तो इसी बात प्रमाणित होती है कि ये जो अरहंत नमस्कार आदि शुभ भाव है, धर्म ध्यान है, ये भी संवर निर्जरा में सहायक है। साक्षात मोक्ष का कारण तो शुक्ल ध्यान होता है, शुद्ध भाव होता है। यद्यपि धर्म ध्यान का भी एक ऐसा स्तर होता है, एक ऐसी अवस्था होती है धर्म ध्यान की, जहां पर उसको भी शुद्ध उपयोग में ग्रहण किया गया है। समय पाहुड़ ग्रंथ में ही ये चर्चा आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रस्तुत की है कि धर्म ध्यान भी परम समाधि रूप होता है, शुद्ध उपयोग रूप हो सकता है। तो अब इसमें फिर ऐसा विभाग आ सकता है किसी के मन में कि जो वो शुद्धोपयोग रूप जो धर्म ध्यान है वही समर निर्जरा और मोक्ष का कारण होगा, बाकी धर्म ध्यान तो बंध का कारण होगा, पुण्य का कारण होगा। लेकिन ऐसा आचार्यों ने नहीं कहा। तत्वार्थ सूत्र में सीधा लिखा है कि परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के ही कारण है। धर्म ध्यान से जो पुण्य का संचय होता है वो पुण्य जीव को संसार में फंसाने वाला पुण्य नहीं होता, वो पुण्य उसको और आगे बढ़ने की सामग्री प्रदान करने वाला पुण्य होता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला पुण्य होता है। भाव संग्रह ग्रंथ में देवसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, केवल नमोकार मंत्र के विषय में हम ये चर्चा कर रहे हैं, सम्माइठी पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा मुखस होई हेउ जैविणियाणम न सो कुणै। सम्माइठी पुण्यम, सम्यक दृष्टि का पुण्य, न होई संसार कारणम नियम, संसार का कारण नियम से नहीं होता। सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नियम से नहीं होता, तो एक नियम बन गया। क्या नियम बना? कि सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से संसार में भटकाने वाला पुण्य नहीं है, संसार का कारण नहीं है। तो मोक्ष हो ही है, फिर किसका कारण है? मोक्ष का कारण है। जैव नियाणम न सो कोई, एक शर्त रख दी उन्होंने। शर्त यह है कि यदि वह सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक सुख की इच्छा ना करे तो उसका पुण्य संसार का कारण ना होकर मोक्ष का कारण हो जाता है। तो इसलिए यहां पर सम्यक दृष्टि जीव की बात है कि अगर सम्यक दृष्टि जीव नमो अरहंताणम करके नमोकार की आराधना करे तो वह नमस्कार निर्जरा का कारण होता है और यहां पर एक पंक्ति लिखी है जयधवला में वीर सिंह आचार्य महाराज, चेदम असिद्धम सुह शुद्ध परिणामी ही कमखया भावे तकती दू। ये बात असिद्ध नहीं है कि अरहंत नमस्कार कर्मों की निर्जरा करता है। आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम इन दोनों से कर्मों का क्षय होता है। अगर इन दोनों से कर्मों के क्षय का अभाव मानोगे तो फिर कर्मों का क्षय किसी भाव से नहीं हो सकता। तो ये बात स्पष्ट हुई कि कर्मों का क्षय शुभ भाव से और शुद्ध भाव से, दोनों भावों से होता है। शुभ भाव धर्म ध्यान है, शुद्ध भाव शुक्ल ध्यान है। तो पार्श्वनाथ भगवान को जो कर्मों का बंध हो रहा था, 17 कर्म प्रकृतियां बंध हो रही थी, उसकी तुलना में जो कर्मों की निर्जरा हो रही थी वो असंख्यात गुणित थी। तो इसलिए देखो आप, अशुभ भाव भी अगर मान लो कोई ऐसा अशुभ भाव कर रहा है जिससे उसको नरक जाना पड़ेगा, तो नरक जाते समय भी उसको कुछ एकदम एकांत से सारे पाप कर्मों का ही बंद हो ऐसा नियम नहीं होता। देखो वैक्री शरीर एक ऐसा नाम कर्म है जो पुण्य प्रकृति है, अब वो चाहे नरक गति में हो या फिर देव गति में हो, वैक्री शरीर नाम कर्म पुण्य प्रकृति में लिया गया है, तो नरक जाने वाला जीव है उसको वैक्री शरीर का भी बंध तो होगा ही। तो अशुभ भाव वाले जीव को भी कुछ पुण्य प्रकृतियों का बंध हो सकता है, शुभ भाव करने वाले को भी कुछ पाप प्रकृतियों का बंध हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अष्टम गुण स्थान तक के कई पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, कई प्रकृतियों का, उनमें से कुछ प्रकृतियां पाप प्रकृतियां भी है। उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि दशम गुण स्थान में पार्श्वनाथ भगवान को जो 14 कर्मों का बंध हो रहा है वो 14 पूरे के पूरे पाप कर्म है। ज्ञानावरण पुण्य नहीं है, अंतराय कर्म पुण्य कर्म नहीं है, दर्शनावरण कर्म भी पुण्य कर्म नहीं है। तो शुभ भाव और शुद्ध भाव के साथ में भी अन्य कर्मों का किंचित बंध हो सकता है, पर प्रधानता की अपेक्षा से कथन करते हैं तो धर्म ध्यान से पुण्य होता है, शुक्ल ध्यान से, धर्म ध्यान शुभ भाव है, शुक्ल ध्यान शुद्ध भाव है, धर्म ध्यान भी मोक्ष में सहायक होता है। इसलिए नमो अरहंताम, आज इसमें एक पंक्ति बड़ी सुंदर लिखी हुई है, पढ़ के सुना रहे। तीन, इसलिए जब नमो अरहंताम से इतने कर्मों की निर्जरा हो रही है तो आचार्य कह रहे हैं कि तीन, इसलिए सोवर्ण भोयर्ण पयाण पच्चावर्ण सत्य पारंभाद क्रिया सुनियमेण अरहंत नमोकारो काय बोध सिद्धम। इससे यह सिद्ध हुआ कि सोते समय आप सोने से पहले नमो अरहंताम कर लो, भोजन के पहले नमो अरहंताम कर लो, कहीं बाहर जाते समय आपको प्रस्थान करना हो तो नमो अरहंताम कर लो, पच्चावन आपको लौटने के भाव हो रहे हैं तो लौटते समय फिर नमो अरहंताम कर लो, फिर सत्त प्रारंभादि शास्त्र प्रारंभ करना चाह रहे हो नमो अरहंताम कर लो, आदि जो भी क्रियाएं कर रहे हो आप सब क्रियाओं के प्रारंभ में आप नमोकार मंत्र कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये करने योग्य है, ये बात सिद्ध होती है। नियम से अरहंतों को नमस्कार करना ही है आपको, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं नमो अरहंताम आपको अंदर में करना है, एकदम जोर से सबको सुनाना नहीं है, दिखावा नहीं करना है, अंदर से नमस्कार करना है। और आप एकांत में हो तो फिर आप बोल करके भी और हाथ जोड़ करके पूरी विधिवत भी आप कर सकते हैं उस क्रिया को। जो जीव श्रद्धा पूर्वक सावधान चित्त होकर अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार करता है वह अल्प काल में सब दुखों से छुटकारा प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जैनम जैत शास्त्र उदक।